नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG-5, NG-50 और NG-100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार की स्टोरों में 35 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 268 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।